بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم خواتین و حضرات. المورد حج ٹریننگ ورکشاپ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حج کا اس سال کا جو موقع ہے وہ قریب آ رہا ہے, اور یقیناً بہت سے خوش قسمت ایسے ہیں کہ جو اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے ان لوگوں کو کہ جو پہلی مرتبہ حج کر رہے ہیں یا اگر پہلے بھی کر چکے ہیں تو وہ حج زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ کے اس کے شعائر کو مناسک کو ادا کرنے کے لیے اگر آمادہ تیار ہو جائیں تو ہماری اس ورکشاپ کے ذریعے سے ہم ان کو کچھ ایسی نئی معلومات دیں جس سے انشاءاللہ ان کا حج زیادہ مؤثر اور دین کے اسپرٹ کے مطابق ہو. ہمارا یہ ورکشاپ دو دنوں پر مشتمل ہے. آج میں آپ کے سامنے حج اور عمرے کا مقصد, اس کا طریقہ اور اس کے شعائر اور مناسک کے پیچھے جو اصل مقصد اور روح ہے اس کو بیان کروں گا. کل اس کے علاوہ کچھ اور ضروری باتیں ہیں کہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. حج اور عمرے کا مقصد کیا ہے؟ حج کو عام طور پر الحج الاکبر کہتے ہیں, اور جس کو ہم عمرہ کہتے ہیں اس کو الحج الاصغر بھی کہتے ہیں. ان دونوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کے اس سے ایک روحانی ملاقات کریں, اور اس کی دعوت پر ہم اس کے گھر پہنچ کے اس کے ساتھ اس بات کا عہد کریں کہ ہم زندگی بھر اس کی توحید پر قائم رہیں گے, اور اس کے اور انسان کے ابدی دشمن شیطان کے خلاف جہاد کرتے رہیں گے. یہ وہ مقصد ہے کہ جو اگر انسان کے ذہن میں ہو اور وہ اللہ کے بتائے ہوئے اس طریقے کے مطابق کہ جو اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے, اگر ہم حج اور عمرہ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جب واپس گھر لوٹتا ہے تو اس کے اندر دین کو اختیار کرنے اور دین پر عمل کرنے کی ایک نئی روح بیدار ہوتی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب ہم حج کو عمرے کو جیسا کہ وہ کیا جانا چاہیے اس کے ظاہر اور اس کی روح اس کے باطن کے ساتھ سمجھیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حج اور عمرے کا طریقہ کیا ہے. حج کے موقع پر عام طور پر حاجی حضرات جب جاتے ہیں اللہ کے گھر کی طرف تو وہ سب سے پہلے عمرے کے ارادے سے جاتے ہیں, اور عمرہ کرنے کے بعد پھر وہ حج کی تاریخوں کا انتظار کرتے ہیں. جب کبھی بھی کوئی حاجی اس طرح سے حج کرتا ہے کہ وہ حج کے سفر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے عمرہ کرتا ہے اور پھر حج کرتا ہے, اس کو حج تمتع کہتے ہیں. ہمارے ہاں اکثریت حاجیوں کی کہ جو حج کرنے جاتے ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں. چنانچہ حج تمتع میں سب سے پہلے عمرہ کیا جاتا ہے, اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم حج کے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو چونکہ عام طور پر اب ہوائی جہاز کے ذریعے سے سفر کیا جاتا ہے تو ہم احرام کی حالت میں آ جاتے ہیں. احرام آپ جانتے ہیں کہ مردوں کے لیے دو سفید چادروں میں ملبوس ہونے کا نام ہے, ایک تہمت کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور دوسری جسم کے اوپر کے حصے کو ڈھانپنے کے لیے ہوتی ہے. یہ دونوں ان سلے کپڑے ہیں. خواتین کے لیے سلے ہوئے کپڑوں کی اجازت ہے, وہ چہرے اور ہاتھ کو نہیں ڈھانپ سکتی, اس کے علاوہ وہ پورا جسم ڈھانک سکتی ہیں. اس کے ظاہری حکم کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا یہ حکم ہے کہ جب ہم احرام کی حالت میں آ جائیں تو ہم نہ اپنے بال کٹوا سکتے ہیں, نہ ناخن ترشوا سکتے ہیں, نہ خوشبو لگا سکتے ہیں, نہ کسی زندہ چیز کو، جاندار کو مار سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے یہ توقع ہے کہ اس سارے سفر میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، کوئی اور بیہودہ بات نہیں کریں گے۔ جب ہم احرام کی حالت میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا سفر شروع ہوتا ہے، اور سب سے پہلے ہم میقات سے گزرتے ہیں، اور میقات ان مقامات کا نام ہے کہ جن سے جب ہم داخل ہوتے ہیں اللہ کے گھر کی جانب تو اس سے پہلے ہمیں احرام کی حالت میں ہونا چاہیے۔ احرام کی حالت میں آ جانے کے بعد اور اللہ کے گھر تک پہنچنے کے سے پہلے جو ایک اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ وہ اللہ کا ذکر ہے، یہ وہ حج کے لیے خاص طور پر اللہ کی طرف سے تجویز کیا ہوا وہ بیان ہے کہ جس کو تمام حاجی بار بار، پسندیدہ یہ ہے کہ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، ظاہر ہے عمرے کے مقصد کے لیے سب سے پہلے، تو وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ اس طواف کا آغاز خانہ کعبہ کے اس حصے کونے سے ہوتا ہے کہ جس میں حجر اسود موجود ہے، اور حجر اسود کو یا تو چوما جاتا ہے، یا پھر ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوما جاتا ہے، یا پھر اس کی طرف ہاتھ سے یا چھڑی سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو حجر اسود کے استلام سے جب ہم شروع کرتے ہیں اپنے اس عمرے کے پروسیس کو، تو یہ سب سے پہلے طواف ہے کہ جو ہم کرتے ہیں، یہ در حقیقت اللہ کے گھر کے گرد سات چکر لگانے کا نام ہے۔ اس میں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہمارے بائیں جانب ہوتا ہے، اور یہ سات چکر حجر اسود سے شروع ہوتے ہیں اور اسی پر ختم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حاجی حضرات سعی کے لیے قریب ہی میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کی طرف جاتے ہیں، اور صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، یہ سات چکر اور لگاتے ہیں۔ اگرچہ کہ صفا و مروہ کی یہ سعی قرآن مجید کے بیان کے مطابق ایک نفلی عبادت ہے، لیکن عام طور پر عمرے میں اس کو اختیار کیا جاتا ہے، اور اس کے بالکل آخر میں، اگر تو حدی کے جانور ساتھ ہوں تو جانور کی قربانی دی جاتی ہے، اور یا تو حلق کیا جاتا ہے یا پھر بال کم کیے جاتے ہیں، حجامت بنائی جاتی ہے۔ ظاہر عام طور پر چونکہ آگے حج کا موقع آنے والا ہے، اس وجہ سے لوگ اس موقع پر حجامت ہی پر اکتفا کرتے ہیں، حلق نہیں کرتے۔ خواتین کے لیے ان کے بالوں کا ایک چھوٹا حصہ، کم حصہ کاٹا جاتا ہے، اور اس طرح سے حاجی عمرے سے فارغ ہو جاتے ہیں، احرام کی حالت سے نکل آتے ہیں، اور وہ انتظار کرتے ہیں پھر اس کے بعد 8 ذوالحج کا، کہ جو در حقیقت حج کی جو عبادت ہے 5-6 دن پر محیط، اس کا آغاز 8 ذوالحج سے ہوتا ہے۔ 8ویں ذوالحج کو تمام وہ حاجی کے جو مکہ مکرمہ میں موجود ہوتے ہیں، وہ دوبارہ احرام پہن کر، احرام کی حالت میں آ کر وہ منیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ منیٰ کوئی اللہ کے گھر سے آپ یوں سمجھیے کہ 5 کلومیٹر دور کی جگہ ہے، میدان ہے ایک کھلا جس میں کہ حاجی انکیمپ کرتے ہیں، ٹینٹوں میں رہتے ہیں، اور وہاں 8 ذوالحج کے دن نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اگلی تاریخ 9 تاریخ کو ان کو میدان عرفات میں جانا ہے، وہاں کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں۔ اگلے روز صبح 9 ذوالحج کو تمام حاجی عرفات کے میدان کی طرف جاتے ہیں۔ یہ حدود حرم سے باہر ایک بڑا میدان ہے، منیٰ سے تقریباً 10 کلومیٹر دور ہے۔ اب تو وہاں جانے کے لیے سواریاں موجود ہیں، لوگ بعض اوقات پیدل جانے کو بھی پسند کرتے ہیں، लेकिन ज़ाहिर है कि इंसान के लिए ये बेहतर और ज़रूरी है कि वो जितना ताज़ा दम अपने आप को रखे उतना ही बेहतर है, इसलिए कि खुदा की इबादत के लिए इंसान को जो तवज्जो दरकार है उसमें इंसान का फ्रेश ताज़ा दम होना ये भी एक प्रायोरिटी की चीज़ होनी चाहिए। जब अराफात पहुँचते हैं और जोहर का वक्त अव्वल वक्त आ जाता है तो इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं और उसके बाद वो दोनों नमाज़ें जोहर और असर की एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं। आज़ान एक होती है, दो तकबीरात होती हैं और दोनों नमाज़ों को कसर किया जाता है और उसके बाद जब नमाज से फारिग हो जाते हैं तो फिर जोहर की नमाज के अव्वल वक्त से लेकर मगरिब की नमाज तक यानी गुरूब आफ्ताब तक जितना भी वक्त है उसमें हाजी हजरात अल्लाह से दुआ व मुनाजात करते हैं, तकबीर और तहलील में इन्वॉल्व होते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और तलबिया भी पढ़ते हैं। जब सूरज गुरूब हो जाता है तो हाजी हजरात मैदान अराफात से निकलते हैं और मुज़दलिफ़ा की तरफ बढ़ते हैं। ये मुज़दलिफ़ा दर हकीकत मैदान अराफात और मिना के दरमियान की एक जगह है लेकिन ये हुदूद अरम हरम के अंदर है, इसीलिए कुरान मजीद ने इसको मशलिर हराम कहा है। और वहाँ पर पहुँच कर हाजी हजरात मगरिब और इशा की नमाज मिला के पढ़ते हैं। मगरिब की नमाज 3 रकत है लेकिन इशा की नमाज को कसर किया जाता है और 2 रकतें पढ़ते हैं, वैसे ही जैसे कि मैदान अराफात में जोहर और असर को मिला के पढ़ा गया था। उसके बाद सोते हैं, आराम करते हैं। जब सुबह उठते हैं तो 10वीं जुलहज होती है, वो तारीख़ के जिस तारीख़ में तमाम आलम इस्लाम में ईद उल अज़हा मनाई जाती है। सुबह के वक्त फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद एक मरतबा फिर थोड़ी देर के लिए अल्लाह का ज़िक्र होता है, तकबीर तहलील होती है और फिर हाजी हजरात मिना की तरफ दोबारा लौटते हैं। मिना पहुँचने के बाद सबसे पहले वो जमरात में जिसको हम शैतान कहते हैं बड़े शैतान पर वो रमी करते हैं, कंकर मारते हैं, अपने जानवरों की कुर्बानी देते हैं। उसके बाद वो अपने हल्क या हजामत कराते हैं और फिर इस तरह से वो अहराम की हालत से बाहर आ जाते हैं। जितना एक जल्दी मुमकिन होता है उसके बाद हाजी हजरात अल्लाह के घर में जाके तवाफ़ करते हैं जिसको तवाफ़ इफादा कहते हैं। फिर 10, 11 और 12 जुलहज को रमी की जाती है, यानी वो 3 जगहें जिनको जमरात कहा जाता है जिनमें के हाजी हजरात जाके 7-7 कंकर मारते हैं, ये अमल होता है अगले 3 दिन, 10 जुलहज, 11 जुलहज और 12 जुलहज। 13वीं जुलहज को ठहरने के लिए इजाज़त है, इसका इख्तियार है, लेकिन 12वीं जुलहज को भी हाजी हजरात रमी से फारिग होने के बाद हज के तमाम मनासिक को ख़त्म करके वापस जा सकते हैं। जो तलबिया पढ़ा जाता है वो रमी के मौके पर 10 जुलहज को जब पहली मर्तबा रमी की जाती है उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया जाता है। ये तो मैंने आपके सामने हज के मुख्तलिफ़ मनासिक बयान किए, उसमें क्या क्या कुछ होता है। ज़ाहिर है ये वो चीज़ है कि जब आप वहाँ जाएंगे और प्रैक्टिकली अमलन इन्वॉल्व होंगे तो आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी। किताबों में भी इसकी तफसीलात बयान होती है, इसमें ज़ाहिर है कि बाज़ तफसीलात में अमलन कुछ ना कुछ इख्तलाफ भी रहता है, उस इख्तलाफ के बारे में कुछ गुफ्तगू हमें मौका मिला तो हम भी करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम इस हकीकत को समझें कि हम ये सफ़र क्यों कर रहे हैं। हमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने माल को ख़र्च किया और हम ख़ुद निकल कर अपने घर बार को छोड़कर एक मकसद को हासिल करने के लिए अल्लाह के घर में पहुंच रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कोई और मकसद, इसकी रूह को समझने के लिए कुछ और तफसीलात हैं कि जिनको जानने के नतीजे में हमें ये इत्मीनान हासिल हो कि जो कुछ हम कर रहे हैं وہ در حقیقت اس مقصد اور روح کے مطابق کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس سوال کے جواب کو پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ حج کو جن مختلف طریقوں کو اختیار کرنے کے لیے ہم سے کہا گیا ہے، حج کے موقع پر جو مناسک ہم کو ادا کرنے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقامات کو شاعر اللہ کہا ہے. شاعر شعیرہ کی جمع ہے. شعیرہ اصل میں کہتے ہیں علامت کو، وہ علامت یا علامتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بتائیں کہ ہم یہ کام کریں علامتی طور پر، سمبولیکلی، کہ ان کے پیچھے کوئی ایک بڑی دینی حقیقت پوشیدہ ہے. چنانچہ جب ہم کسی بھی منسک، کسی بھی شعیرے کو اختیار کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ ظاہری طور پر اس کو اختیار کرنے کا حکم اور طریقہ کیا ہے، اور یہ بھی جاننا ہے کہ اس کے پیچھے اصل روح، اصل مقصد کیا ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا ایک ظاہر ہے، ہمیں اس میں کچھ کام، کچھ اعمال کرنے ہیں، کچھ اذکار ہیں کہ جن کو بیان کرنا ہے، لیکن نماز کا اصل مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے. تو ہم نماز پڑھیں اور سب کچھ ظاہر میں کریں لیکن اللہ کو یاد نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے نماز کی اصل روح نہیں پائی. ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، لیکن ہم اگر روزے کے اصل مقصد کو جو قرآن میں بیان ہوا ہے لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار بنو، تم متقی بنو، اگر وہ چیز پیدا نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے روزے کے احکام کو تو بجا لائے، اس پر تو ہم نے عمل کیا لیکن اس کی روح سے محروم رہے. چنانچہ اسی طرح سے حج کا معاملہ ہے. حج کا معاملہ تو خاص طور پر اور بھی اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہم حج اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، ہم حج اس لیے کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے. کوئی شکی نہیں ہے، یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر بالکل بجا ہیں، لیکن اللہ کا ہر حکم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہوئی دین کی ہر بات جو ہم تک پہنچی ہے، اس کے پیچھے اس کے ظاہر کے علاوہ کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی روح، کوئی نہ کوئی پرپز ہے کہ جس کو جب تک کہ ہم نہیں سمجھیں گے اور سمجھ کے اس کو پانے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم دین کے ان تقاضوں کو پورے کرنے کا حق ادا نہیں کریں گے. چنانچہ آئیے ہم ان میں سے ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم حج اور عمرے کے موقع پر اختیار کرتے ہیں، کہ ان کو اختیار کرنے کے پیچھے اصل روح مقصد کیا ہے، کہ جس کو اگر ہم جان لیں تو پھر اس کے بعد ہمارا حج اور ہمارا عمرہ حقیقت میں وہ تبدیلی لاتا ہے، وہ جذبہ پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر وہ احساس بیدار کرتا ہے کہ جو ان عظیم عبادتوں کو اختیار کرنے کا اصل مقصد ہے. سب سے پہلے احرام کو لیجیے. یہ اصل میں، جیسا کہ میں نے گزارش کیا، کہ انسان دو چادروں میں ملبوس ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف رخت سفر باندھنے سے پہلے اس بات کا عملاً اظہار کرتا ہے کہ میں نے اپنے دنیا کے ساتھ تعلق کو وقتی طور پر ختم کر دیا، میں نے اب وہ درویشی کی ایک زندگی اختیار کر لی ہے جس میں اب مجھے اپنے رب سے ملنا ہے، اور میں اب ایک سادہ لباس میں موجود ہوں. حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر احرام کے دو چادروں پر غور کریں تو اصل میں یہ وہی دو چادریں ہیں کہ جو ہم میں جب کوئی مرتا ہے تو اس کے لیے جو کفن ہے وہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، گویا کہ ہم اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کے خدا کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارا یہ لباس ہم کو یاد کرا رہا ہے کہ اصل میں اب ہم اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے سفر کر رہے ہیں اور ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر انسان اپنے اس احرام کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس مقصد کو پانے کے لیے اپنے اندر جذبہ پیدا کرے کہ جس مقصد کے لیے وہ جا رہا ہے، تو یہ لباس از خود وہ روح پیدا کرتا ہے اور اس کو اختیار کرنے میں بہت معاون بنتا ہے. इस अहराम की हालत में आ जाने के बाद अल्लाह की तरफ से जो हमसे तकाज़ा किया गया है वो ये है कि हम तलबिया पढ़ना शुरू कर दें। तलबिया दर हकीकत उस ज़िक्र का नाम है कि जिसको मैंने अभी बयान किया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाज़िर हूँ ए अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, मैं हाज़िर हूँ तेरा कोई शरीक नहीं मैं हाज़िर हूँ। इन्नल हम्दा व नेमत लक वल मुल्क, तमाम तारीफ़ और शुक्र, तमाम नेमतें और तमाम बादशाहत तेरी है, ला शरीक लक तेरा कोई शरीक नहीं। ये तलबिया क्या है? ये तलबिया दर हकीकत अल्लाह की तरफ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम से जब आप अल्लाह ताला ने ये तकाज़ा किया कि वो उसके घर को असर नौ तामीर करें, तो उस तामीर की तकमील के बाद, मुकम्मल होने के बाद, अल्लाह ताला ने अपने बंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से एक तकाज़ा किया जिसका ज़िक्र क़ुरान मजीद में सूरह हज की आयत नंबर 27 में है। सूरह हज सूरा नंबर 22 और आयत नंबर 27, वाज़िन फिन्नास बिल हज, और तुम आज़ान दो, पुकारो लोगों को हज के लिए, या तू का रिजालन व आला कुल्ली ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, वो आएंगे तुम्हारे पास पैदल और दुबली पतली ऊँटनियों पर, मुख्तलिफ दुश्वार दराज रास्तों को अबूर करके। गोया के अल्लाह ताला ने अपने घर की तामीर करने के बाद अपने बंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तकाज़ा किया कि वो उसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से लोगों को दावत दें कि वो आएँ और उसके घर की ज़्यारत करें, उम्रा करें, हज करें। हम जब हज का इरादा करके निकलते हैं और अहराम की हालत में होते हैं तो तलबिया पढ़ के गोया कि हम खुदा ताला की इस दावत का जवाब देते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाज़िर हूँ या अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, तूने मुझे बुलाया, तूने मुझसे तकाज़ा किया कि मैं तेरे घर में आऊँ और तेरी तौहीद का इकरार करूँ, उसके बारे में अहद करूँ और तेरे हुक्म पर मैं शैतान के ख़िलाफ़ जिहाद करूँ, मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। ज़ाहिर है कि इंसान जब तलबिया इस जज्बे के साथ पढ़ेगा तो उसके अंदर हज की, उम्रे की असल रूह बेदार होगी। मीकात दर हकीकत, जैसा कि मैंने गुजारिश की, वो मकाम है कि जिससे कि आगे इंसान अहराम की हालत के बग़ैर नहीं जा सकता अगर वो उम्रा हज का इरादा रखता है। ये दर हकीकत खुदा ताला की सल्तनत का आगाज़ है अलामती तौर पर। गोया के हमको ये बता दिया गया है कि इससे आगे बढ़ने से पहले तुम्हें ये मालूम हो जाना चाहिए कि तुम अब अपने खुदा के करीब जा रहे हो, इसके लिए तुम ज़ाहरी तौर पर भी तैयार हो जाओ और बातनी तौर पर भी तैयार हो जाओ। उसके बाद हम जब दाखिल होते हैं मस्जिद हराम में तो हमारे सामने अल्लाह का घर होता है, खाना काबा, बैतुल्लाह। अल्लाह ने अपनी याद को ताज़ा करने के लिए अपने बंदों के लिए उस घर को तामीर किया, अपने बंदों के ज़रिए से तामीर करवाया। और इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के घर को देख के अल्लाह याद आता है, अल्लाह के घर को देख के इंसान सब कुछ भूल जाता है, अल्लाह के घर को देख के इंसान को अपने गुनाह याद आते हैं, वो गुनाहों की माफ़ी मांगता है, अल्लाह के घर को देख के इंसान को अपनी ज़रूरतें याद आती हैं, अपनी कमज़ोरियाँ याद आती हैं, उसको ये याद आता है कि मुझे मरना है, मुझे आखिरत में उसके सामने खड़ा होना है, वो अपने खुदा को गोया के अपने सामने पाता है। तो अल्लाह का घर बैतुल्लाह एक अजीम अल्लाह की तरफ से हमारे लिए निशानी है, एक शईरा है कि जिससे गोया के हज उम्रे का आगाज़ होता है। उसमें एक कोने पर हजर अस्वद मौजूद है। इस हजर अस्वद को से ही आगाज़ होता है तवाफ़ का। ये दर हकीकत वो पत्थर है कि जिसको यमीनुल्लाह, अल्लाह का दायां हाथ करार दिया गया। इसको चूम कर या हाथ से छू कर और हाथ को चूम कर या इसकी तरफ इशारा करके, यानी हजर अस्वद का इस्तलाम करके, गोया कि हम अल्लाह के साथ उसके अलामती तौर पर दाएं हाथ को पकड़ के, उसको चूम कर उसके साथ अपने अहद को एक मरतबा फिर उस्तवार करते हैं। हम उससे वादा करते हैं, जैसा कि हदीस में आया, वफ़ाम बेअहदिक, हम तवाफ़ कर रहे हैं और तेरे साथ अहद को पूरा करने को का वादा करते हुए, इस जज्बे के साथ। گویا کہ ہم اپنے رب سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے خدایا، ہم تیرے گھر میں تیرے دائیں ہاتھ کو پکڑ کے تجھ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اب بقیہ جتنی بھی زندگی ہے ہم تیری تابع داری، تیری غلامی، تیرے احکام کی پابندی میں گزاریں گے، تیری توحید کے اوپر کاربند رہتے ہوئے اس کا پرچار کرنے کے جذبے کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر انسان کے دل میں حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے یہ جذبہ، یہ حقیقت موجود ہو، تو پھر وہ اپنے اندر اس تبدیلی کو لانے کے لیے بھی پوری سعی اور کوشش کرے گا۔ طواف در حقیقت اللہ کے گھر کے گرد قربانی کے مقصد کے لیے انسان جو آتا ہے، یہ اس کا طواف ہے، یہ اس کے پھیرے ہیں۔ انسان اللہ کے گھر میں آیا ہے قربانی دینے کے لیے، اپنی جان کی نظر پیش کرنے کے لیے۔ گویا کہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں اس جذبے کے ساتھ کہ ہم نے اپنی جان، اپنے مال کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جانور ہم قربان کریں گے وہ درحقیقت علامتی طور پر ہماری جان اور ہمارے مال کا گویا کہ متبادل ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ہم اپنی جان اور اپنا مال خدا کے حضور میں پیش کرتے، ہم اس کے لیے تیار ہیں اور ہم علامتی طور پر جانور قربان کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں اپنی اس کمٹمنٹ کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم یہ کام کرنے چلے ہیں اس مقصد کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے گھر کے گرد جب ہم طواف کرتے ہیں، سات چکر لگاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں اپنی جان کی نظر کے طور پر، تو وہ روح پیدا ہوتی ہے، وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو وہ اسپرٹ پیدا ہوتی ہے کہ جو در حقیقت اس قربانی میں مطلوب ہے۔ اور طواف یہ تو گویا کہ انسان پروانہ وار اللہ کے گھر کے گرد چکر لگا رہا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ بالکل سامنے ہے اور ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد انسان قریب ہی میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کی طرف جاتا ہے، اور وہاں جا کے پھر صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگاتا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ کے گھر سے ذرا دور ایک مرتبہ پھر اپنی قربانی کا جو نذرانہ ہے اس کے پیش کرنے سے پہلے اللہ کے گھر، اس کے معبد کا ایک مرتبہ پھر چکر ہے۔ یہ در حقیقت تاریخی طور پر ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد کو تازہ کرنے کا ایک عمل ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے بیٹے، اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا، اور اس قربانی کو پیش کرنے سے پہلے جیسا کہ ایک طریقہ دین ابراہیم میں موجود ہے، اللہ کے گھر کے گرد صفا اور مروہ کے چکر لگائے ان کے ساتھ، ان کو گود میں لے کر۔ یہ وہی قربانی کا ایک جذبہ ہے، ایک سنجیدگی کا اظہار ہے، ایک اپنی کمٹمنٹ کو آخری حد تک پہنچانے کا ایک عمل ہے کہ جس کے بعد انسان در حقیقت جو کام کرتا ہے وہ پھر پوری روح کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے بعد انسان حلق کروا کے یا حجامت کروا کے اپنے احرام کی حالت سے باہر آ جاتا ہے اور اس کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر 8 ذوالحج کو پھر حاجی احرام کی حالت میں آنے کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے دوبارہ منا میں جاتے ہیں، اور منا میں وہ بہت بڑی تعداد میں اور حاجیوں کے ساتھ آسمان تلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور گویا کہ وہ خدا کی طرف سے جو ان کو انویٹیشن ملا، جو دعوت ملی، اس کے گھر میں آ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے، اس کی توحید کا اقرار کر کے، اس پر عمل کرنے کا اعادہ کر کے، وہ اس کے ساتھ مل کر اس کے دشمن، اس کے اور ہمارے دشمن شیطان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے اب نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعوت دی اور ہم نے اس کی دعوت پر لبیک کہا۔ یہ وہ شیطان ہے جس نے در حقیقت خدا تعالیٰ کے اس فیصلے کے بعد، کہ جس میں اللہ نے انسان کو بنانے کے بعد شیطان سے، یعنی شیطان نے اس کا انکار کیا، فرشتوں سے اور تمام جنات سے اس بات کا تقاضا کیا کہ وہ آدم کے آگے سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اس نے انکار ہی نہیں کیا بلکہ اس بات کا इस बात को बयान किया बड़े शद्दोमत के साथ, और ये बयान सूरह एराफ़ की जो सातवीं सूरह है उसकी आयत नंबर 16 और 17 में मौजूद है कि कहा कि काला फिबा फबिमा अगवैतनी, कि इस वजह से कि जो तूने मुझको गुमराह किया, ला क़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं लाजमन उनके सीधे रास्ते पर बैठ जाऊँगा, सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम वान अयमानिहिम वान शमाइलिहिम, और मैं लाजमन आऊँगा उनके पास, उनके आगे से भी, उनके पीछे से भी, उनके दाएँ से भी, उनके बाएँ से भी, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और तू इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। ये इबलीस ने ऐलान जंग किया हुआ है हम इंसानों के ख़िलाफ़। अल्लाह ने हमको पैदा किया है कि हमको वो इस दुनिया की आजमाइश से गुजार कर जन्नत में दाखिल करे। इबलीस ने ऐलान किया है कि वो इंसानों को सीधे रास्ते से पर चलने से रोकेगा और उनको गुमराह करेगा। अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दी है कि तुम अगर चाहो तो मेरे बंदों को गुमराह करने की कोशिश करो, तुम इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सकोगे मेरे उन बंदों के मामले में कि जो हिदायत को पाने की कोशिश करेंगे और संजीदा होंगे और मुखलिस होंगे। तो अल्लाह ताला ने इस मौके पर, हज के मौके पर, उम्रे के मौके पर अपने बंदों को दावत दी है कि वो उसके घर में आएँ और फिर उस जिहाद में शरीक हों कि जो बहरहाल इस दुनिया की ज़िंदगी में बरपा है, और हमको अल्लाह ताला की तरफ से हमसे तकाजा किया गया है कि हम उस जिहाद को पूरी संजीदगी के साथ, सही जज्बे के साथ इख्तियार करें। और उसका जो पहला मरहला है वो ये है कि तमाम हाजी 8 जुलहज को मिना के मैदान में जाते हैं, और वहाँ जैसे कि जिहाद में पड़ाव डाला जाता है मैदान जंग में जाने से पहले, इस तरह का वहाँ मंज़र होता है। नवी जुलहज की सुबह को वो मैदान अरफात में जाते हैं जहाँ उनका इमाम उनको खुतबा देता है जोहर की नमाज के आगाज़ में, और उसके बाद वो जोहर और असर की नमाज़ें कसर करके मिला के पढ़ते हैं, इसलिए कि बहरहाल इस वक्त वो हालत जिहाद में है, वो अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकले हैं। तो जैसे कि अल्लाह की राह में लड़ने में तरीक़ा है कि नमाज़ों को कसर कर लिया जाता है और उनको मिला लिया जाता है, इसी तरह से वहाँ भी ये मामला होता है। और फिर उसके बाद एक तवील अरसा है, कई घंटों पर मुहित एक मौका है कि इंसान ग़ुरूब आफ्ताब तक अल्लाह से माफ़ी मांगे, दुआ मुनाजात करे और तलबिया पढ़े, तकबीर पढ़े, तहलील पढ़े। और ये वो अमल है कि जो ज़ाहिर है कि ख़ास इस मकसद के लिए किया जाता है कि इंसान शैतान के साथ जिहाद करने के उस अमल से पहले अपने आप को गुनाहों से धो दे, अल्लाह से तौफीक मांगे और उसको उससे ये तौफीक मांगे कि उसके कदम मजबूती के साथ जमे रहें और दुश्मन का मुकाबला कर सकें इस अमल से। और ये बहुत बड़ा अमल है, एक आला अजीम एक मौका है कि इंसान खुदा ताला के हुजूर में खड़ा हो के माफ़ी मांगे, अपने लिए भी, औरों के लिए भी, दुनिया और आखिरत सब की कामयाबी की दुआ करे। इसके बाद इन हाजी हजरात मुज़दलिफ़ा की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ जाके वो मगरिब और इशा की नमाज एक साथ पढ़ते हैं। ज़ाहिर है कि इंसान जिहाद करता है, अल्लाह से दुआ करता है, तवील इबादत करता है तो थक भी जाता है, उसके बाद वो सोते हैं, सोने के बाद दोबारा जब सुबह उठते हैं तो फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, और फिर अल्लाह का जिक्र करने के बाद वो मिना की तरफ बढ़ते हैं। 10 जुलहज को पहले वो रमी करते हैं बड़े शैतान पर जाकर, 7 कंकर मारते हैं और वहाँ जाकर उनका तलबिया ख़त्म हो जाता है। गोया कि ये वो मकाम है कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने बुलाया था, अब उस वो मकाम को पहुँच गए हैं और अब उनको शैतान के ख़िलाफ़ जिहाद करना है। ये अगले 3 या 4 दिन, यानी 10, 11 और 12 या 13वीं जुलहज को भी ये अमल जारी रहेगा, यानी तीनों जो जमरात हैं उन पर कंकर मारे जाएंगे, गोया के शैतान को मारा जाएगा। ये अलामती तौर पर हम उन जमरात को मारते हैं, लेकिन हकीकत में हमारे अंदर ये जज्बा, ये रूह होती है कि हम शैतान के साथ जिहाद कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। एक बड़ा है और 2 उसके मुकाबले में छोटे हैं, और हम 3 या 4 दिन ये अमल जारी रखते हैं, बार बार रमी करते हैं, और इसके पीछे असल मकसद ये है कि शैतान के ख़िलाफ़ हमारी कोशिश किसी एक मौके के लिए नहीं होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए। हम एक मरतबा शैतान को पसपा करेंगे, वो दोबारा आएगा, हमें दोबारा उसके ख़िलाफ़ इकदाम करना है, फिर वो आएगा। कोया कि ज़िंदगी भर यही अमल रहेगा, हमें ज़िंदगी भर शैतान का मुकाबला करना है। ये रमी है जो दर हकीकत इस सारे अमल का क्लाइमेक्स है, जिसमें कि हम अल्लाह की दावत इनविटेशन पर उस दुश्मन का मुकाबला करने आते हैं और अपने जज्बे का इजहार करते हैं कि हमने उससे उसे दूर मार भगाना है। ज़ाहिर महज कंकर नहीं मारने, बल्कि उसकी जानिब से जो हमारे अंदर वसवसा अंदाजी होती है, जिस तरह से वो हमें बुराई की तरफ पुकारता है, हमें उसे पसपा करना है। कंकर मारते हुए, रमी करते हुए, ये जज्बा है कि जो मौजज़न होना चाहिए। इसके बाद हम जानवर की कुर्बानी देते हैं। जानवर की कुर्बानी दर हकीकत, जैसा कि मैंने गुजारिश की, हमारी तरफ से इस जज्बे का इजहार है कि हम अल्लाह के घर में आए हैं अपनी जान का नज़र पेश करने के लिए, नजराना पेश करने के लिए। हमारी जान की नज़र जो है, उसका मतलब ये है कि हम इसलिए आए हैं कि हम खुदा के सामने अपने इस जज्बे को बयान करें कि हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। उसने हमें ज़िंदगी दी, उसने हमें नेमतें दी, हमारा माल, हमारी जान सब उसी के लिए है। हम इस वक्त अलामती तौर पर इस जानवर को अपनी जान की नज़र के तौर पर पेश कर रहे हैं, और ज़ाहिर है इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त हम इस जज्बे के साथ इस जानवर को कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी में जब जब कोई ऐसा मौका आएगा कि जिसमें हमसे तकाजा किया जाएगा कि हम कुर्बानी पेश करें अपनी ख्वाहिशात की, अपने वक्त की, अपने जज्बात की, माल की, तो हम उसको पेश करेंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस बात को बयान फरमाया सूरह हज में कि ये जो कुर्बानी है, आयत नंबर 37 में, ये इसमें जानवर का गोश्त या खून अल्लाह ताला तक नहीं पहुँचता, बल्कि हमारे अंदर का जज्बा और तकवा पहुँचता है। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है कि लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह तक ना तुम्हारा, ना इन जानवरों का गोश्त और ना इनका खून पहुँचता है, वलाकिन यनालुहु तक्वा मिनकुम, बल्कि तुम्हारे अंदर का तकवा, परहेज़गारी, खुदा के साथ जो एक डिवोशन है वो पहुँचता है। इसके बाद जो हम हल्क करवाते हैं, ये दर हकीकत अलामत है इस बात की कि गोया कि अब हम खुदा ताला की ग़ुलामी में आ गए। एक ज़माने में जब ग़ुलाम लौंडियाँ हुआ करते थे, तो अगर कोई शख्स किसी मास्टर का, किसी आका का ग़ुलाम बनता, तो वो हल्क करवाता और गोया कि ये ऐलान करता कि अब मैं किसी एक आका का ग़ुलाम हूँ। हम इसी तरह से अपने रब के ग़ुलाम होने का ऐलान करते हैं सारे अजीम हज की इबादत के अमल से गुज़रने के बाद, और गोया कि हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हम अब अपने रब के ग़ुलाम बन चुके हैं, अब ज़िंदगी भर हम उसकी ग़ुलामी ही में गुजारेंगे। इसके बाद हम हालत अहराम से बाहर आ जाते हैं, और एक अमल जो इस मौके पर अल्लाह के घर से मुतालिक होता है, वो तवाफ़ है कि इसको तवाफ़ इफाज़ा कहते हैं। ये तवाफ़ इंसान करने जाता है और गोया कि अल्लाह का शुक्र अदा करता है, उससे तौफीक मांगता है, उसके सामने इस बात का इजहार करता है कि उसने उसको दावत दी, उसको बुलाया इस घर में, और फिर ये मौका दिया कि इस अजीम इबादत के मुख्तलिफ शायर मनासिक को अदा करे। तो ज़ाहिर है कि ये गोया के अपनी इस पूरी इबादत को खुदा के हुजूर में शर्फ़ कबूलियत पाने के लिए वो इस्तदा है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। इसके साथ अगर इंसान सही भी करना चाहे तो इसकी भी इजाज़त है, ये भी एक नफली इबादत है, चाहे उम्रा हो चाहे हज हो। इसके बाद जैसा कि मैंने गुजारिश की कि 10, 11, 12 जुलहज को इंसान मीना में रहता है और रमी करता है, और 13वीं जुलहज को भी वो मीना में रहकर रमी कर सकता है, लेकिन 12वीं को भी वापस आ सकता है। ये रमी क्या है, इसके बारे में मैंने अपनी गुजारिशात पेश कर दी। इसके बाद हाजियों को ये मौका होता है कि वो मीना से निकल कर अपने हज के मुकम्मल करने के बाद जहाँ जहाँ वापस लौटना चाहें वो लौट सकते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हमें जब भी मौका मिले उम्रा करने का या हज करने का, हम सही जज्बे के साथ उसके शायर, उसके मनासिक की रूह को सामने रखते हुए करें, ताकि जब हम हज और उम्रा करके वापस लौटें तो हमारे अंदर वो रूह मौजूद हो कि जिसके मौजूद होने के नतीजे ही में ये बात बयान की गई है कि जो शख्स सही हज करके, हज मबरूर करके वापस आता है, वो गोया के ऐसे वापस लौटता है जैसे कि एक नौमौलूद बच्चा जैसे गुनाहों से पाक होता है वैसे ही गुनाहों से पाक होकर आता है। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे। अब अगर आप लोगों के कुछ सवालात हैं तो मैं हाजिर हूँ।
जी राफिया ख्वाजा साहिबा।
खालिद साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हज एक दफा से ज्यादा कर सकते हैं या दूसरे लोगों को चांस देना चाहिए हज का?
देखिए, एक तो चीज़ है जिसको आप कहते हैं शरीयत का हुक्म, और एक वो चीज़ है कि जो आपकी अपनी जजमेंट है, आपकी अपनी अच्छी सोच है, जिसको कि आप उसके दलाइल के साथ लोगों के सामने पेश तो कर सकते हैं लेकिन शरीयत के हुक्म के तौर पर किसी को नहीं कह सकते। और इसमें ये भी मुमकिन है, जैसा कि आजकल सऊदी गवर्नमेंट ने भी किया है, कि अगर कोई चीज़ लाजिम नहीं है, नफली है, इजाफी है, तो वो भी कानून साजी करके एडमिनिस्ट्रेटिव मकासद को सामने रखते हुए उसमें कुछ रुकावटें पैदा कर सकती है। चुनाचे हज तो हर मुसलमान मर्द और औरत पर के जो हज करने की इस्तेदाद रखते हैं, ज़िंदगी में एक ही मर्तबा फ़र्ज़ है, लेकिन इसकी कोई शरीयत में पाबंदी नहीं आयद की गई कि इंसान एक से ज़्यादा मर्तबा हज नहीं कर सकता। ताहम चूँकि ये हकीकत है कि हज करने के मामले में अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है, बहुत बड़ी तादाद में लोग हज करने आते हैं, और ज़ाहिर है कि बहुत से लोग अक्सरियत वो होते हैं कि जो पहली मर्तबा हज कर रहे होते हैं, और ज़ाहिर है कि स्पेस की कमी, फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से ये बात बिल्कुल वाज़ह है कि अगर आप हर आदमी को जिसने पहले भी हज किया हुआ है हर साल हज करने की इजाज़त दे दें तो फिर उन लोगों की का हक़ मारा जाएगा कि जो पहली मर्तबा लाजिम हज के तौर पर, फ़र्ज़ हज के तौर पर वो करने का इरादा रखते हैं। इसलिए इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि अगर हज के मौके पर वो लोग के जो पहले से हज कर चुके हैं वो इस बात को तय करें कि अगर कोई वाकई नागुज़ीर कोई मजबूरी नहीं तो वो दूसरों को तरजीह देंगे और ख़ुद अपने आप को पीछे रखेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और मुझे मालूम है कि जो मकामी लोग हैं उनके लिए भी सऊदी हुकूमत ने भी इस बात को तय किया हुआ है, और ज़ाहिर है कि उसकी वजह यह है कि अगर तमाम लोग के जो सऊदी अरब में रहते हैं वो हज करने आ जाएं तो फिर उन लोगों का के लिए हज करने का मौका बहुत कम रह जाएगा कि जो पहली मर्तबा दूर दराज इलाकों से हज करने के लिए आते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बाद ऐसे लोग हैं कि जिनको हर साल हज करना पड़ता है, उसकी वजह यह है कि वो हाजियों को गाइड करते हैं, इसलिए कि वो अपने साथ हाजियों को लेके जाते हैं और उनको मुख्तलिफ जो हज के मौाक़े हैं उनमें उनके लिए वो हिदायत मुहैया करते हैं। तो ज़ाहिर है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एक मुसलमान को अच्छी जजमेंट को इख्तियार करते हुए इस बात के बारे में एक रीज़नेबल रवैया इख्तियार करना चाहिए।
मैं ये पूछ रही थी कि हज किसके ऊपर फ़र्ज है? जो मुझे थोड़ी बहुत मालूम है कि हज पहले अपने आपकी जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको आपको कंप्लीट करना चाहिए, एंड फिर उसके बाद अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप हज करें।
खुदा ताला का तो इरशाद ये है कि मन इस्तता इलैही सबीला, जो उसके सफ़र की, उसके करने की इस्तेतात रखता है। ज़ाहिर है कि इस इस्तेतात को हम तय करेंगे, माली इस्तेतात भी है इसमें, जिस्मानी तौर पर इंसान फिज़िकली इतना फिट है या नहीं है वो हज करने के लिए जाए और पीछे मसाइल छोड़ के जाए कि जिनको कि कोई और अटेंड करने वाला ना हो, तब भी ज़ाहिर है कि उसकी इस्तेतात नहीं है, उसे पहले अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी है। लेकिन इस मामले में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप किसी दूसरे को बाकायदा पाबंद कर दें कि आपकी ये ज़िम्मेदारियाँ हैं इसलिए आप हज नहीं कर सकते। नहीं, इसमें फ़र्द ख़ुद अपने बारे में फ़ैसला करेगा कि क्या वो हज के लिए जाना अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। दूसरे लोग उसको तवज्जो दिला सकते हैं। इस मामले में खुदा ताला का जो इरशाद है वो मैंने आपको बता दिया, वो सिर्फ़ इतना है कि मन इस्तता इलैही सबीला, हर वो शख्स के जो उसके सफ़र की इस्तेआत रखता है उसको हज करना लाजिम है।
डॉक्टर साहब, ये आफिया आकिफा सदीकी साहिबा का सवाल है कि उन्होंने ये कहीं से सुना है कि हज उन ख्वातीन के लिए फ़र्ज़ नहीं है जो खुद नहीं कमाती, क्या ये ठीक है?
जो ख़वातीन ख़ुद नहीं कमाती, ज़ाहिर है कि इसका मतलब ये है कि अगर उनके शौहर उनको हज पर ले जाने के लिए आमादा नहीं है और वो कहते हैं कि मैं तो हज करूँगा लेकिन मैं अपनी बीवी को हज नहीं कराऊँगा, तो ज़ाहिर है कि उनकी इस्तेआत ख़त्म हो गई। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इनमें से बहुत सी ख़वातीन वो हैं कि जिनके शौहर ये कहते हैं कि नहीं, कैसे हो सकता है कि मैं हज करूँ और मैं अपनी बीवी को साथ ना ले जाऊँ, तो अगर वो ख़ुद आमादा है तो फिर इस्तेआत की शर्त पूरी हो गई और फिर उनको हज करना चाहिए। फिर अगर कोई ऐसी खातून है कि जो कहें कि नहीं मैं तो अपने पैसों से करूंगी वरना मैं नहीं करूंगी, तो ज़ाहिर है कि इसका इसका मतलब ये है कि वो अपनी उस इस्तेआत की शर्त पूरी हो जाने के बावजूद जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस्तेआत जो है वो एक ऐसी शर्त है कि जो मुख्तलिफ तरीक़ों से पूरी हो सकती है। आपने खुद कमाया, इस्तेआत हो गई, आप जा सकते हैं। आपको किसी और ने कहने जाने की दावत दे दी, वो शौहर हैं या कोई और हैं, जैसे हमारे यहाँ आमतौर पर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो अपने एम्प्लॉयज़ को हज पे जाने के लिए फराहम करती हैं सहूलतें, तो ज़ाहिर है कि उनकी इस्तेआत की वो शर्त पूरी हो गई, अब उनको जाना चाहिए।
आमिर अब्दुल्ला साहब।
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब
वालेकुम सलाम।
जी। मेरा सवाल यह है कि लोग उमूमन जब हज पर जाते हैं तो हज तमत्तु के लिए जाते हैं, वो साथ में उमरा उससे पहले कर लेते हैं हज से अगर वो पहले गए हुए हों। लेकिन देखा कि ये गया है कि जब वो वापसी पर मदीना मुनव्वरा से आ रहे होते हैं तो वो सऊदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए दोबारा उमरा करना चाहते हैं, उनका ये ख्याल होता है कि इसमें सवाब ज्यादा है। क्या वहाँ के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए इस तरह का उमरा करना ठीक काम है?
अब डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि सऊदी गवर्नमेंट ने मदीना मुनव्वरा से वापसी पर उम्रा करने पे पाबंदी आयद की हुई है हज के सीज़न में?
जी, जिस सीजन में मैं गया था तो उस सीजन में उनका इसरार होता था और वो बल्कि लोगों को रोकते थे वापस मक्का मुअज्जमा
ओके
वापस आने
ओके,
से, उनका तो ये हुक्म
यानी
होता था कि आप वापस।
असल में इसमें मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया कि इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि अगर आप मक्का मुकरमा ही में हैं और वहाँ आपने हज कर लिया, या आप समझिए कि हज से पहले आपने उम्रा कर लिया, तो बस उसके बाद आपको मज़ीद उम्रा नहीं करना। बहुत से लोग हैं कि जो मस्जिद आयशा में जाके दोबारा फिर अहराम बांधते हैं और वापस आके उम्रा करते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपने देख लिया कि अल्लाह ताला तो इस मामले में इतने पर्टिकुलर हैं कि आप अगर हज के लिए गए और आपने उम्रे की सहूलत हासिल की तो आपको फिर एक कुर्बानी देना लाजिम हो जाएगी। यानी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बात बयान कर दी कि ये फिर उनके लिए लाजिम है कि वो एक जानवर की कुर्बानी दें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर वो 10 रोज़े रखेंगे जिनमें से 3 रोज़े वो हज के सफ़र में रखेंगे और 7 बाद में रखेंगे। लेकिन मदीना मुनव्वरा जाके वापसी पर इंसान महसूस होता है कि एक नए सफ़र में है। इसमें शायद वो प्रॉब्लम नहीं है कि जो मक्के में रहते हुए बार बार उम्रा करने में है। मगर आपने जो सवाल किया है, अगर उसमें वो बात सही है कि सऊदी गवर्नमेंट इससे रोकती है, तो फिर तो हरगिज़ नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपके लिए मकामी कवानीन की पाबंदी करना लाजिम है, जबकि वो कवानीन आपको किसी ऐसी चीज़ के करने से रोक रहे हैं कि जो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कहा जा सकता है कि इख्तियारी नफली इबादत है। तो ज़ाहिर है कि आप जिन लोगों के मुल्क में, जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन में गए हैं, तो आप असल में एक अंडरटेकिंग दे के गए हैं, एक वादा करके गए हैं कि आप उस सरजमीन में उस लोकल कानून की पाबंदी करते हुए अल्लाह की इबादत करेंगे। तो ये तो गोया कि आपने उस रूह को पामाल किया कि जो हज और उम्रे की रूह है, जिसमें कि आपको अल्लाह की पाबंदी करनी है और अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो और उलुल अम्र मिनकुम, जो तुम्हारे अंदर के लोग इख्तदार में हैं, उलुल अम्र हैं, उनके अहकाम की भी पाबंदी करो। तो ये तो ज़ाहिर है कि एक नाजायज़ चीज़ होगी कि इंसान एक कानून की खिलाफवर्जी करे जबकि उसको मालूम है कि उसको इस चीज़ से रोका गया है।
सैयद खुर्रम साहब अपना सवाल कीजिए।
जी, मेरा सवाल ये है कि हज तमत्तो के दौरान जब हम उम्रा के साथ हज करेंगे, जो कुर्बानी हम देंगे वो हम उम्रा की करने की वजह से कुर्बानी देंगे, तो क्या इसके अलावा भी हमें कोई जो नॉर्मल कुर्बानी होती है यौम नहर के दिन वो भी करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, क्या वो ज़रूरी है या नहीं?
देखिए, ये बड़ी दिलचस्प और अजीब बात है कि हमारे यहाँ हाजियों की एक अजीम अक्सरियत हज में जो हज की असल कुर्बानी है वो नहीं देते। वो कुर्बानी के जो हदी के जानवर की होती है, जो अगर आप आसपास के इलाकों में रहते हैं तो ख़ुद अपने साथ घर से उस जानवर को लेके जाते हैं, उस पे निशानात लगे हुए होते हैं, पटे पड़े हुए होते हैं, कुरान ने उनको कलायत कहा, और ज़ाहिर है कि वो ख़ास स्पेशल जानवर होते हैं, अगरचे कि उनसे आप इस्तिफादा कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल उनके बारे में ये तय होता है कि ये अब अल्लाह के घर के करीब जाकर ही कुर्बानी इनकी दी जाएगी। तो आम तौर पर हमारे यहाँ जो हज करने जाते हैं हज तमत्तो के मुताबिक के उसूल के मुताबिक एक कुर्बानी जो देते हैं वो असल में हज तमत्तो की देते हैं। अगर आपको दूसरी कुर्बानी भी देनी है तो फिर दो जानवरों की कुर्बानी आप देंगे, और ये इरादा करेंगे कि एक कुर्बानी हज तमत्तो में जो अल्लाह ताला की तरफ से जो तकाज़ा है कफ़ारे का, और दूसरी कुर्बानी जो हकीकत में हज की कुर्बानी है वो आप अदा करेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूँ कि एक तो ये चीज़ अब अनफॉर्चुनेटली तकरीबन फरामोश हो गई है, और एक और चीज़ जो इससे भी ज़्यादा बिल्कुल मालूम होता है गायब हो गई है वो ये है कि कुर्बानी उम्रे की भी होती है, वो भी नफली है, और ये हज वाली कुर्बानी भी जो हदी के जानवर की है ये भी नफली है। ज़ाहिर है कि अगर ये फ़र्ज़ कुर्बानी होती तो फिर ये मुमकिन नहीं था कि मुसलमानों के यहाँ इतना बड़ा घपला होता कि वो फ़र्ज़ चीज़ को अल्लाह की इबादत में छोड़ रहे हैं, लेकिन नफली इबादत भी एक बड़ी गैर मामूली कदर व कीमत की चीज़ होती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ आम तौर पर हज करने वाले लोग जब हज करने जाते हैं हज तमत्तो करते हैं तो जो कुर्बानी देते हैं वो दरहकीकत हज तमत्तो करने के नतीजे में जो उन पर कुर्बानी लाजिम आ जाती है वो करते हैं, वो हदी के जानवर की कुर्बानी के जो दरहकीकत हज की असल कुर्बानी है वो उसको अदा नहीं करते। अगर किसी को अदा करनी है तो फिर उसको दो जानवरों की कुर्बानी देनी चाहिए।
आकिफा सदीकी साहिबा ने सवाल किया है जी। वो कह रही हैं कि उन्होंने एक सोफ़ा ख़रीदा इंटरेस्ट पर, 0% इंटरेस्ट पर, और उसकी वो हर महीने पेमेंट करती हैं 1 साल तक। उसकी अभी कुछ पेमेंट उनकी बाकी है, तो क्या ये भी कर्ज़ में आता है? और उनको किसी ने ये बताया है कि अगर आप पर कर्ज़ हो तो आप हज के लिए नहीं जा सकते।
देखें, बात यह है कि आपके पास अगर कोई ऐसा स्ट्रीम ऑफ इनकम है कि जो मालूम है कि जिससे कि पेमेंट हो रही है, तो ज़ाहिर है कि वो कोई ऐसा बर्डन नहीं है कि जो आपको जाने से रोक देगा। यानी ये जो आम तौर पर कहा जाता है कि कोई शख्स मकरूज़ है वो कर्ज़ पे ना जाए, उसका मतलब ये होता है कि जिस ज़माने की ये बात है उस ज़माने में लोग मकरूज़ होते ही उस वक्त थे कि जब वो बेबस होते थे, लाचार होते थे, उनके पास कुछ नहीं होता था। आजकल तो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए हम खाते पीते होने के बावजूद हम लोगों से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, और उसके बाद हम उनको रिटर्न कर देते हैं। सो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपके लिए हज पर जाने के लिए कोई रुकावट बने। ज़ाहिर है कि आप जो पेमेंट कर रही हैं वो पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में कर रही हैं, और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हो जाती है कि इसके बाद पेमेंट आपके रुख्सत हो जाने के बाद करनी पड़ेगी तो उसकी उसकी फैसिलिटीज़, उसकी जो रेवेन्यूज़ हैं वो आपके लवाहिकीन में मौजूद होंगे, उनके पास वो अदा कर सकेंगे। ये कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए कि आप हज ना कर सकें।
सैयद खुर्रम साहब सवाल कीजिए।
जी, अभी जो कुर्बानी के हवाले से आपने बात बताई, तो अगर हम हज की अपनी नफली कुर्बानी जो करना चाहें, जो एक जो तमत्तो के अलावा जो हमने की थी, तो क्या उसका वो भी वहीं पे करना जरूरी है, या ये हो सकता है कि हम पाकिस्तान में या जहां भी हम रहते हैं वहां कह दें कि भी हमारी तरफ से कुर्बानी कर दी जाए?
नहीं, आपको वही करनी होगी, इसलिए कि असल में तो ये कुर्बानी दर हकीकत अल्लाह के घर में जाकर वहाँ करनी है। मैंने जैसा कि अभी हज के मुख्तलिफ मनासिक को बयान करते हुए गुजारिश की कि हम तो असल में तवाफ़ जो करते हैं उसमें भी असल में यही चीज़ कर रहे होते हैं, बयान कर रहे होते हैं इस जज्बे को कि हम दर हकीकत आए हैं, तेरी दावत पर आए हैं, अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए आए हैं, नज़र के तौर पर जानवर की कुर्बानी करेंगे। तो ये सब तो असल में उस घर से मुताल्लिक है। अगर आप उस घर में जाकर और कहीं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में कुर्बानी करेंगे तो ये हरगिज़ वो कुर्बानी नहीं होगी।
राफिया ख्वाजा साहिबा,
खालिद साहब मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने फरमाया कि हज करने के बाद इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं, तो ये बताइए कि उम्रा करने के बाद भी इंसान के गुनाह इसी तरह अल्लाह माफ कर देता?
जी, हदीस में ये आया है कि एक उम्रे और दूसरे उम्रे के दरमियान के जितने भी गुनाह हैं वो माफ़ हो जाते हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है जो आम तौर पर अहादीस में इस तरह की आती है, वो मशरूत होती है इस चीज़ के साथ कि आपने उम्रा या हज सही तरीक़े से अदा किया है। उसका मतलब ये है कि जब कभी भी आप उम्रा करेंगे या हज करेंगे उसकी सही रूह के साथ, तो उसके बाद ये लाजिम होगा कि आप वहाँ जो मुख्तलिफ मौक़े आपको मैसर आएंगे उसमें आप तौबा करेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे, गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। उसके बाद लाजमन इंसान धुल जाता है। अगर वाकई इंसान ने सही हज किया है, अगर वाकई इंसान ने सही उम्रा किया है, खुदा के घर के आगे उसने तवाफ़ किया है, तो ये कैसे मुमकिन है कि इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी ना मांगे? कैसे मुमकिन है कि वो अपनी शर्मिंदगी का इजहार ना करे कि उसने माजी की ज़िंदगी में जो कुछ भी गलत काम किए हैं, झक मारी है, उस पर वो शर्मिंदा है? तो जाहिर है कि ये जो बयान है दर हकीकत हदीस में आया, ये इसके साथ मशरूत है कि इंसान ने ये इबादत की सही स्पिरिट और सही जज्बे के साथ, और उसके बाद जाहिर है कि इंसान अपने गुनाहों को धुलवा के आता है।
आमिर अब्दुल्ला साहब,
जब एक मुसलमान जाता है हज के लिए तो वो सिर्फ मक्का मुआज़मा ही नहीं जाता बल्कि वो मदीना मुनव्वरा भी जाता है, और जाहिर है हमारे लिए वो भी एक बहुत ऐसी जगह है जहाँ हम बहुत शौक से जाते हैं। तो क्या वहाँ मस्जिद में हाजिरी देने के भी कोई आदाब हैं? वो क्या आदाब?
देखिए जी, जब इंसान जाता है हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए मक्का मुकरमा, और उसे ये एहसास होता है कि वो अल्लाह के घर की ज़्यारत तो उसे हासिल हो गई, मगर अब नस्बतन वो बहुत कम फ़ासले पर है उस अज़ीम शहर के से कि जिसमें अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, अपने ज़िंदगी के आखिरी 10-11 साल गुजारे। और अगरचे के आपका अपना शहर मक्का था, लेकिन इसके बावजूद आपने जो अहद किया था अंसार के साथ उसको निभाते हुए फ़तेह मक्का के बाद भी आप मदीना मुनव्वरा वापस गए। और ये मदीना मुनव्वरा दर हकीकत है ही मदीनतुन नबी, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर। वहीं आप अल्लाह को प्यारे हुए, वहीं आपको दफन किया गया। तो जाहिर है कि एक मुसलमान के जज्बात उस शहर के साथ गैर मामूली होते हैं, और इसमें ख़ास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत और अकीदत है, ये इसका तकाज़ा है कि इंसान वहाँ जाए, आपकी मस्जिद में जाके नमाज़ें पढ़े, मदीने के उस दौर को याद करे कि जिसमें अल्लाह के पैगंबर ने अल्लाह के पैगाम को पेश किया, अल्लाह की शरीयत को लोगों के सामने पेश किया, लोगों की तरबियत की, वहीं से ये दीन फैला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक वहाँ है। ज़ाहिर है कि इंसान वहाँ जाता है, और जो हमको कहा गया है कि हम आपके हुजूर में सलातुस्सलाम पेश करें, यानी आपके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें। आपने हम पर इतना बड़ा एहसान किया कि अल्लाह का दीन हम तक पहुंचाया और कुर्बानी देकर पहुंचाया, इंतहाई खलूस के साथ पहुंचाया, उसमें किसी किस्म की कोई कमी न रखी। ज़ाहिर है कि हम जहां अपने मोहसिनों के लिए दुआ करते हैं, अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं और बुज़ुर्गों के लिए, दोस्तों के लिए करते हैं, तो हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा अज़ीज़ अगर कोई हो सकता है तो अल्लाह के पैगंबर हैं। तो आपके लिए दुआ करना आपके दर्जात की बुलंदी के लिए, ज़ाहिर है कि ये वो चीज़ है कि जो जो ज़रूरी है, जिसके बग़ैर इंसान रह नहीं सकता। और वहीं पर मस्जिद नबवी के साथ ही, यार एक तो वही है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंबर है और आपका हुजरा मुबारक है, जिसके दरमियान के हिस्से को आपने ख़ुद जन्नत का एक टुकड़ा करार दिया और ये फरमाया कि क़यामत के रोज़ यहीं पे, यही हौज़े कौसर होगा, यही मकाम, वहाँ जाके नमाज़ पढ़ने के अगर मौका मिले। ये बात मैं अभी कल गुजारिश करूँगा कि इसमें जो हमारे यहाँ ऊधम मचती है, लोग आला तर दर्जात हासिल करने के लिए एक दूसरे को तकलीफ़ देते हैं, इससे तो गुरेज़ करना चाहिए। लेकिन अगर इंसान को तौफीक मिल जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ी सआदत की चीज़ है। साथ ही जन्नतुल बकी है, जहाँ के एक बड़ी तादाद में अल्लाह के पैगंबर के साथी दफन हैं, वहाँ जाकर भी इंसान को एक उसके ऊपर अजीब कैफियत तारी होती है। एक सादा जगह जिसमें कि सादा कब्रें हैं और एक शहर है उन अजीम लोगों का कि जो दफन है, कि जिन्होंने इस दुनिया में अल्लाह के पैगंबर के साथ मिलकर इस दीन के पर ईमान लाए, इसके लिए कुर्बानियाँ दीं और अजीम मकामात दर्जात हासिल किए। तो वहाँ जाना ज़ाहिर है एक बड़ी बड़ी सआदत की चीज़ है, अच्छे जज्बात के साथ जाना चाहिए। जितना एक इंसान के लिए मुमकिन हो वहाँ मस्जिद नबी में इबादत करनी चाहिए। ये तो खैर कोई ज़रूरी शर्त नहीं है जो हमारे यहाँ मशहूर हो गई है कि हमें लाजमन वहाँ 40 नमाज़ें पढ़नी है, लेकिन बहरहाल जितना एक इंसान को तौफीक मिले इंसान उससे इस्तेफादा करें। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने हमारे इस वर्कशॉप को अटेंड किया और बहुत अच्छे सवालात किए। अल्लाह ताला हमें अपने दीन के फहम में इजाफ़ा करने की तौफीक दे और ख़ास तौर पर इस बात की तौफीक दे कि हम में से जो लोग हज के लिए जा रहे हैं इस साल या आइंदा कभी, वो हमें तौफीक दे कि हम अपना हज और उम्रा सही जज्बे के साथ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।